नज़दीकियां। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी सी बात को लेकर ये दोनों नमूने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे और एक दूसरे से बहस करने लगेंगे। अब आगे वो सब आहान और रौनक की हरकतों से हद से ज्यादा कन्फ्यूज और परेशान हो चुके थे। वहीं तभी अबीर सिंह राठौर हंसते हुए आगे आया और एकदम से बोला, वाकई मान गए, मेरी नई फैमिली काफी दिलचस्प है। अबीर के शब्द ऐसे थे मानो जैसे अरमान के दिल को भीतर से कोई खींच रहा हो। उसके तन बदन में आग से रख गई थी। अरमान ने उसकी बात पर काफी बुरा सा मुंह बना लिया था। फिर वो अबीर को देखते हुए झुंझलाकर सोचने लगा, ये मेरा परिवार है और ये यहाँ खड़े होकर ऐसे हक जता रहा है जैसे ये इसका परिवार है। आखिरकार ये यहाँ कर क्या रहा है और ये सुबह शाम सिंघानिया मेंशन में ही क्यों पड़े रहता है? आखिर इसे यहाँ रहने की इजाज़त किसने दी है? अब आस्था तुरंत ही आगे आई और बड़े ही प्यार से बच्चे को नानी माँ की गोद में देकर रौनक का हाथ थामते हुए कहने लगी, देखो पहली बात तो ये कि तुम दोनों को बच्चे के नाम को लेकर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी हमारी प्रिंसेस का नाम नामकरण में रखा जाएगा। प्रिंसेस का नाम क्या रखा जाएगा ये नामकरण के बाद ही डिसाइड होगा, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली के आधार पर पंडित जी बताएंगे कि उसे कौन सा अक्षर मिलेगा। आहान और रौनक की आंखें आस्था की बात सुनकर हैरानी से फैल गईं। उन्होंने एक दूसरे की ओर शौक से देखा और क्षण भर के लिए वो दोनों हक्के बक्के रह गए। अब उन्हें अपनी हरकतों पर अफसोस हो रहा था कि वे ऐसे कैसे बच्चों की तरह लड़ झगड़ सकते हैं। तभी नानी माँ ने मुस्कुराते हुए उन्हें समझाया, अब तब तक तुम दोनों को जो भी नाम और जितने भी नाम पसंद किए हैं उन्हें एक पर्ची पर लिखकर रख लो। जैसे ही पंडित जी तुम्हारी बेटी के नाम का पहला अक्षर बताएंगे वैसे ही हम फटाफट से बिटिया का नाम रख देंगे, ठीक है? अब जैसे ही रौनक और आहान ने नानी माँ के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो सबसे पहले रौनक और आहान के चेहरे पर शौक के एक्सप्रेशन आए थे और फिर जल्द ही वो एक्सप्रेशन उतावलेपन में बदल गए थे। वहीं सभी लोग इन मियाँ बीवी के एक्सप्रेशन देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहीं नानी माँ ने अपनी नज़रें घुमाई, फिर टाइगर और मारिया की ओर देखकर शांत स्वर में बोली, ये बात मैं केवल इन दोनों के लिए नहीं बल्कि आप दोनों के लिए भी कह रही हूँ। आप दोनों समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? इस पर टाइगर बिना कुछ बोले बस मारिया को एक नज़र से देखता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं मारिया के दिलो दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन उसने अभी तक किसी से कुछ भी नहीं कहा था। आस्था भी उससे राजवीर जिंदल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी कि मारिया ने डिजिटल तरीके से ये जानने की कोशिश की या नहीं कि आखिर कैसे वो सब राजवीर जिंदल के डाकविला घुस सकते हैं और उसे डाकविला के बारे में क्या क्या पता चला है। हालांकि अभी तक आस्था को मारिया से ठीक से बातचीत करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अरमान सीधे वहां से निकलकर अपने कमरे में चला आया था। उसे पता था कि अगली सुबह घर में कई सारे फंक्शन होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद आस्था भी उसके कमरे चली आई। अरमान को एक नज़र देखने के बाद वो सीधे वॉशरूम में चली गई। इस वक्त आस्था का दिल अजीब से बेचैनी से भरा हुआ था। चारों तरफ से वो खुद को उलझा हुआ सा महसूस कर रही थी, क्योंकि एक तो कल बच्चों के नामकरण के साथ साथ रश्मि की गोद भराई रस्म भी होने वाली थी और साथ ही साथ उसे कल डाकविला में जाकर अरमान के लिए एंटीडोट भी खोजना था। वो जानती थी उसके लिए ये सिचुएशन आसान नहीं होगी। डाकविला में उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आस्था का दिलो दिमाग दोनों इस वक्त अशांत थे। उसके चेहरे पर उलझन भरे एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में एक साथ कई सारे ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहती थी। तभी उसकी नज़र बाथरूम के कोने में रखे हुए एक ग्लास पर पड़ी, जिसे देखते ही उसे कुछ पुरानी बातें याद आ गईं। उस ग्लास को थाम के वो उन यादों को झटकने की कोशिश करने लगी, क्योंकि इस वक्त वो अपने तनाव को कम करना चाहती थी, इसीलिए देर न करते हुए उसने वो ग्लास अपने होठों से लगा लिया था। थोड़ी ही देर में उसे अपने भीतर एक अजीब सी हल्की फुल्की गर्मी महसूस होने लगी। उसका मूड अचानक बदलने लगा और बिना सोचे समझे वो पूरे बाथरूम में भींग भींग के हल्की हल्की आवाज में गाना गुनगुनाने लगी। वहीं दूसरी ओर अरमान अपने कमरे में बैठे हुए आज दिन भर हुई सारी बातों के बारे में सोच रहा था। कहीं ना कहीं उसे ये बात खटक रही थी कि सारे घर वाले किस तरह से आस्था को इतनी अहमियत देते हैं और उसके दादाजी कितनी आसानी से आस्था की हर बात मान लेते हैं। यहाँ तक कि उसके पापा, जिनसे वो अब ठीक से घुलमिल नहीं कर पा रहा था, वो भी आस्था को बेटा कहकर पुकारने लगे थे। ये सोचते सोचते उसका दिमाग और ज्यादा फ्राई हो रहा था। उसे आस्था से अजीब सी इरिटेशन हो रहा थी। उसने सोचा, आखिर ये लड़की कौन है और क्यों मेरा पूरा परिवार इस लड़की के इर्द गिर्द घूमने लगा है? भले ही आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान सबकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो अरमान को अंदर ही अंदर कचोटे जा रहा था, और नानी माँ का सब पर इस तरह हुक्म चलाना भी वो समझ नहीं पा रहा था। उसने महसूस किया कि उसका दिमाग कुछ खराब हो रहा है। उसके ऊपर नाराजगी और बेचैनी हावी होती जा रही थी। कहीं ना कहीं वो मन ही मन सोच रहा कि काश उसकी 2 साल पहले की यादें उसके साथ होती तो उसके लिए इन सब नए रिश्तों को अपनाना आसान होता। हैरान सा वो अपने ही ख्यालों में काफी देर खोए हुए इधर उधर टहल रहा था। तभी अचानक बाथरूम से आती हुई आस्था की अजीब सी आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने गौर से नोटिस किया कि आस्था अलग अलग सुरों में गाना गुनगुना रही थी। जो भी उसके दिल में आ रहा था वो बिना रुके गाए जा रही थी। कभी वो कटी रात खेतों में तू आई क्यों नहीं गुनगुनाने लगती, तो कभी किसी और धुन में खो जाती। दरअसल ये वही गाना था जिस पर उसने आखिरी बार वंशिका के साथ डांस किया था और नशे की हालत में वही यादें उसके जहन में घूमने लगी थीं। फिर वो अचानक लाल परी जैसी पंक्तियां भी गाने लगी। आस्था की लड़खड़ाती आवाज सुनकर अलमान को पहले तो बहुत हैरानी हुई, फिर धीरे धीरे उसे उसकी आवाज से इरिटेशन होने लगी, क्योंकि आस्था की आवाज और तेज होती जा रही थी। इसीलिए अरमान के लिए वहां खड़ा रहना मुश्किल होता जा रहा था और वो बाथरूम के दरवाजे पास आकर खड़ा हो गया और आस्था को शांत रहने के लिए कहने लगा। लेकिन उसके बार बार समझाने के बावजूद जब आस्था की आवाज कम नहीं हुई तो आखिरकार अरमान का सब्र जवाब दे गया और वो तूफान की तेजी से अंदर दाखिल हुआ। किसी बब्बर शेर की तरह वो आस्था पर गुर्राया। उसने आस्था का हाथ पकड़ लिया और तमतमाते हुए बोला, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है और तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम इस तरह की हरकत कैसे कर सकती हो? अरमान मौका मिलते ही आस्था पर पूरी भड़ास निकालने लगा था। वहीं आस्था उसकी बातों का मतलब सही से नहीं समझ पा रही थी और ऊपर से आस्था ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आस्था का सारा शरीर नशे के असर में था। वो ना तो वापस होश में आ पा रही थी और ना ही वो अरमान को साफ साफ देख पा रही थी। लेकिन आस्था को नशे की हालत में देख के अरमान बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। जाहिर था उसे ये सब देखना नागवार गुजरा था। अरमान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। वो लगभग चीखते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो। हाँ, तुम्हें दारू पीने के लिए मेरा ही बाथरूम मिला था क्या?
आस्था के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो सावधानी से नहीं खड़ी थी। अब अरमान की इतनी तेज आवाज सुनकर अचानक आस्था का बैलेंस बिगड़ गया था। वो गिरने लगी, लेकिन तभी अरमान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में थाम लिया। आस्था अरमान के ऊपर झूलती चली गई और उसकी आंखें बंद हो गई। अब ये देख के अरमान का माथा झनझना उठा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन में करे तो करे क्या, क्योंकि आस्था पूरी की पूरी उसी के ऊपर गिर चुकी थी और आस्था के कपड़े भी गीले थे, क्योंकि उसने कपड़े चेंज करने से पहले ही वो ड्रिंक पी ली थी और अब वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। वहीं अरमान हैरानी और अविश्वास भरी नज़रों से आस्था को देख रहा था। उसे अनजाना सा एहसास हो रहा था। उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबा दिया। शुक्र था कि आस्था ने आज अंश को नानी माँ को संभालने के लिए दे दिया था, क्योंकि नानी माँ ने ही आस्था से कहा था कि वो अंश को उनके पास ही रहने दें और वो ज्यादा से ज्यादा समय अरमान के साथ गुजारें और उससे प्यार भरी बातें करें और उसका दिल जीतने की कोशिश करें। हो सकता है कि अरमान के दिल में एक बार फिर से आस्था के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाए। नानी माँ नहीं चाहती थीं कि अंश की वजह से अरमान और आस्था का ध्यान भटक जाए, इसीलिए उन्होंने आस्था से अंश को ले लिया था। और वैसे भी अंश पूरे परिवार के साथ आसानी से घुल मिल जाता था और वो घर के सभी सदस्यों को जानता था, तो इसीलिए वो आराम से नानी माँ के साथ सुकून से सो गया था। लेकिन फिलहाल तो अरमान का दिमाग जोरों से चल रहा था। वो सोचने लगा कि इस सिचुएशन में वो क्या करे। अगर वो इस तरह से घर वालों को उसके रूम में बुलाता है या फिर किसी की मदद लेता है तो सभी घर वाले उसके बारे में क्या अनाप शनाप बातें सोचेंगे, या फिर वो लोग ये सोचेंगे कि शायद मैंने ही इस लड़की को कुछ खिला पिला दिया है, क्योंकि सब जानते हैं कि मैं इस लड़की को कितना नापसंद करता हूँ। ऊपर से उसका भाई अविनाश रघुवंशी, वो भी मुझे ही गलत समझेगा कि मैंने ही उसकी बहन के साथ कुछ कर दिया है, और कहीं वो इस गलत फहमी को लेकर मेरी कंपनी के साथ सारी डील कैंसिल ना कर दे। ओफ, क्या मुसीबत है, अब मैं क्या करूं? अरमान ने ऐसे मुंह बनाया जैसे किसी ने उसे जेल भेज दिया हो। अरमान ने आस्था को नाराजगी से घूरते हुए अपने मन में सोचा, वैसे तो ये लड़की खुद को बहुत बहादुर समझती है और आज तो इसने इतने सारे गुंडों को अकेले धूल भी चटा दी थी, लेकिन फिर भी मेरा इतना तेज बोलना ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और इतनी आसानी से बेहोश हो गई, कमाल है। फिर अचानक अरमान को आस्था पर अजीब सा शक होने लगा। कहीं ये लड़की मुझे परेशान करने के लिए कोई नया ड्रामा तो नहीं कर रही है? इसीलिए उसने आस्था का चेहरा पकड़कर झट से ऊपर उठा लिया। अरमान की नज़र अचानक आस्था के खूबसूरत लाल होठों पर जाकर ठहर गई थी। आस्था की नज़दीकी उसके दिल की धड़कनों को तेज कर रही थी। अरमान का दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आस्था के खूबसूरत स्ट्रॉबेरी जैसे होठ दिखाई दे रहे थे और वो चाहकर भी खुद को उसे छूने से रोक नहीं पा रहा था। और अचानक उसने जल्दी से आस्था के कोमल होठों पर अपने होठ रख दिए और एक हल्की सी किस कर दी। आस्था, जो अभी बेहोशी की हालत में थी, वो सही से अरमान की किस का रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अरमान अब आस्था के इतने करीब होकर उसकी सांसों की महक में पूरी तरह से खो चुका था। कब उसके हाथ बहुत सॉफ्ट तरीके से उसके शरीर पर चलने लगे उसे खुद भी पता नहीं चला। उसके होठों से होते हुए वो धीरे धीरे उसकी गर्दन तक आ चुका था। तभी अचानक उसे आस्था का ख्याल आने लगा। अरमान ने सोचा, अगर आस्था बेहोशी से जाग गई तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचेगी। अरमान की आंखों में उसके इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर एक जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है जिसे रोका नहीं जा सकता, और आज आस्था उसे बेहद प्यारी और अट्रैक्टिव लग रही थी और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने मौका पाकर जल्दी से आस्था के ऊपर का फ्रॉक सूट उतार दिया। आस्था को इस हालत में देखकर उसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसके अंदर उसे पाने की चाहत हिलोरे मार रही थी। जल्दी ही उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम में ले आया। वहां जाकर वो और ज्यादा कन्फ्यूज हो गया। उसका दिल इस वक्त आस्था को पूरी तरह से पाने के लिए बेताब था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसे रोक रहा था। उसका दिमाग उससे कह रहा था, रुक जा, ये लड़की तो यही चाहती है कि तू इसके करीब आए, इसे छुए, इससे प्यार करे, लेकिन तुझे इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना है। तेरी जिंदगी में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है। उसके दिल और दिमाग में तूफान सा चल रहा था। साथ साथ वो आस्था को ध्यान से देख रहा था, जो अब ठंड से कांप रही थी, क्योंकि उसके कपड़े अभी तक गीले ही थे। और अगले ही पल उसके दिमाग के घोड़े बेकाबू होकर दौड़ने लगे थे, जिसके बाद वो और भी ज्यादा कन्फ्यूज होता जा रहा था। वो अब सिचुएशन करे तो करे क्या? अगर उसने उसके कपड़े नहीं बदले तो ये लड़की पूरी रात ठंड से बीमार पड़ सकती है, और कहीं उसका इल्जाम भी उसी पर ही ना आ जाए। ऊपर से उसे खुद नहीं पता था कि आखिर वो आस्था से चाहता क्या था। क्या वाकई वो आस्था से प्यार करता है, या फिर वो सिर्फ उसकी खूबसूरती को देख के बहकने लगा है? कहीं ना कहीं अरमान के दिल और दिमाग में अलग तरह की जंग चल रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी। उसने कमरे की लाइट बंद कर दी और एक नाइट सूट हाथ में लेकर जल्दी ही आस्था के कपड़े बदलने लगा। उसके कपड़े उतारते वक्त अरमान की उंगलियां अनजाने में ही आस्था की स्किन को छू गई थी। आस्था, जो बेहोशी की हालत में थी, वो अब हल्की सी कसमसाने लगी और उसके होठों से एक धीमी सी आवाज निकली। अरमान को ये काम करना बेहद अजीब सा लग रहा। उसकी दिल की धड़कन बेकाबू होकर धक धक किए जा रही थी।